हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव ने तारा के भाई बहनों को कबीर की कैद से आज़ाद करवा दिया था। हालांकि ध्रुव ने तारा को ये नहीं बताया था कि वे किसकी कैद में थे। उसने तारा के सामने कबीर का जिक्र तक नहीं किया था। तारा ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे बस इस बात की खुशी हो रही थी कि मिली और उसके भाई बहन आज़ाद हो चुके थे। वो आराम से ध्रुव से दूर जा सकती थी। कबीर के जो इरादे थे वो इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं थे। ऐसे में अगर तारा ध्रुव के पास रहती तो वो किसी न किसी तरीके से उसे ब्लैकमेल करके अपने काम करने को मजबूर कर ही देता। बातों ही बातों में ध्रुव ने तारा को बताया कि वो उसके यानी मिली के घर पर गया था। उनका घर मुंबई के स्लम एरिया में था। ऊपर से काफ़ी छोटा होने की वजह से ध्रुव ने तारा के भाई बहनों को तुरंत एक फ्लैट खरीदकर उसमें सेटल कर दिया था। हालांकि तारा ने उसके ऐसा करने पर उसे डांटा, पर ध्रुव इसकी कहाँ सुनने वाला था। तारा अब और ध्रुव के पास नहीं रह सकती थी। यही अच्छा मौका था तो उसने ध्रुव को थैंक्स कहकर मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच ध्रुव। आई नो थैंक्स एक बहुत छोटा शब्द होगा तुमने जो भी किया है उसके आगे, पर अब मैं और तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे वहाँ छोड़ाओ जहाँ तुमने मेरे भाई बहनों को छोड़ा था। तारा के जाने की बात सुनकर ध्रुव का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा था। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। तारा को एक ना एक दिन उससे दूर जाना ही था। फिर न जाने क्यों ध्रुव का दिल उसके दूर जाने के ख्याल से बेचैन हो गया था। ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो तारा को कैसे रोके। तभी तारा ने कहा, वैसे तो यहाँ मेरा कोई सामान नहीं है, जो भी है तुमने ही लेकर दिया है, पर रात काफ़ी हो गई है, कल सुबह तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ देना। सुबह मिलते हैं ध्रुव, गुड नाइट। अपनी बात खत्म करके तारा वहां से जाने को हुई। तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तारा का चेहरा दूसरी तरफ था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और मन ही मन बोली, प्लीज ये सब मत करो ध्रुव, मेरे लिए ऐसे ही तुमसे दूर जाना आसान नहीं है। ऊपर से तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं। मेरा तुम्हारे साथ रहना तुम्हारे खतरों को बढ़ा देगा। अच्छा है जो तुमने सही वक्त पर मिली और उसके भाई बहनों को ढूंढ लिया, वरना मेरा सच सामने आने पर तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत होती। तारा ने अपना हाथ ध्रुव से अलग करने की कोशिश की। ध्रुव ने उसका हाथ छोड़कर आगे आते हुए कहा, चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मेरी शादी तक तो रुक जाओ। तारा के लिए ये बहुत मुश्किल था कि अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होता देखे। तारा सीधे सीधे इनकार भी नहीं कर सकती थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी शादी में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है ध्रुव। तुम्हें मुझ पर शक था कि मैं तुम्हारी जासूसी करने के लिए आई हूँ। हाँ, तुम्हारा शक सही था, क्योंकि मार्टिन ने मेरे भाई बहनों को किडनैप करके मुझे ब्लैकमेल किया था। पर आई स्वेयर, मैंने तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन आज तक किसी तक नहीं पहुँचाई है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तारा सच कह रही थी। उसने आज तक कभी ध्रुव की कोई बात किसी तक नहीं पहुँचाई थी। उसकी आंखों में एक सच्चाई नजर आ रही थी। क्यों नहीं रह सकती हो, हमारे बीच एक दोस्ती का रिश्ता है तारा, क्या तुम अपने फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं करना चाहोगी, ध्रुव ने बौहें उठाकर कहा। तारा चाहकर भी मना नहीं कर पाई। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, मुझे मेरे घर तो छोड़ देना, तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए मेरा यहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। आने जाने में दिक्कत होगी, और तुम्हें कौन रोज़ाना पिक करने के लिए जाएगा, यहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ड्राइवर है, बाकी सारी सुविधाएँ देती हैं, सिर्फ 3 दिन की बात है, रुक जाओ तारा। रही बात तुम्हारे भाई बहनों की, तो सुबह मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए ले जाऊँगा, ध्रुव ने काफ़ी रिक्वेस्टिंग वे में कहा, तो तारा ने हाँ में सिर हिला दिया था। तारा वहां से जाने को हुई कि तभी अचानक ध्रुव ने अपने पॉकेट से एक मोबाइल निकाला और तारा को देते हुए कहा, इसमें उनके नंबर सेव हैं, बात कर लेना, और बेफिक्र रहना, मुझे तुम पर यकीन है, तो किसी तरह का कोई ट्रैकिंग या रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तारा ने मुस्कुराकर एक बार फिर से उसे थैंक्स कहा और कमरे के अंदर आ गई थी। रूम में आते ही तारा ने सीधा मिली को वीडियो कॉल किया। उसे सच में मिली और उसके भाई बहनों की परवाह थी, और साथ ही इस बात का डर भी था कि कहीं ध्रुव के सामने उनकी सच्चाई ना आ जाए। ध्रुव मिली को बताकर आया था कि तारा उसे कॉल करेगी। वो रात को सोने के बजाय तारा के फ़ोन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके पास एक वीडियो कॉल आया, मिली ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने तारा को देखकर मिली ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड आप ठीक हैं तारा मैडम, वरना मुझे लगा कि उसने आपको मार दिया होगा। आपको नहीं पता कि इन दिनों में हमने क्या कुछ नहीं झेला है, सब मेरी वजह से हुआ है। उस खतरनाक काम पर मुझे आपको नहीं भेजना चाहिए था। कॉल रिसीव करते ही मिली की बातें शुरू हो गई थी। ध्रुव जब उन्हें बचाने आया था, उसने जिस तरह से उन आदमियों को मारा था, उसे देखने के बाद मिली समझ गई थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। ऊपर से उसने चुटकियों में उनके लिए एक फ्लैट खरीद कर तैयार कर दिया था। उनके घर पहुंचने तक उस घर में सारी सुख सुविधाएं तक अरेंज करवा दी थी। ध्रुव को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना, तारा ने सख्त आवाज में पूछा। अभी तक तो नहीं हुआ है, मैंने अपने भाई बहनों को समझा दिया है। ये घर बहुत अच्छा है तारा मैडम, बच्चों को इसकी आदत लग जाए उससे पहले हमें किसी दूसरी जगह भिजवा दीजिए। आपके हीरो ने हमारा घर देख लिया है, हम अब वहाँ नहीं रह सकते हैं, मिली ने जवाब दिया। तारा ने उसकी बात पर हामी भरी। मिली सही कह रही थी, ध्रुव ने उनका घर देख लिया था। ऐसे में अगर वो उसका फ्लैट छोड़कर वापस उस जगह पर रहने के लिए आते तो ध्रुव सीधा वहीं पर जाता। कल मैं घर आ रही हूँ, फिर मिलते हैं। अपने भाई बहनों को समझा देना कि ध्रुव के सामने कोई भी गड़बड़ ना करें, वो बहुत स्मार्ट है, पल में पकड़ लेगा। तारा ने उसे समझाया और फिर कॉल कट कर दिया था। मिली से बात करने के बाद तारा ने सुकून भरी आवाज में कहा, तुम ठीक हो? चलो, मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा कि मेरी वजह से तुम और तुम्हारे भाई बहनों की जान खतरे में आ गई थी। मिली, अब कबीर भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। कबीर का जिक्र होने पर तारा को कबीर की याद आई, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। बात करना तो तुमसे भी बनता है कबीर अग्निहोत्री, तारा ने सर्द आवाज में कहा। हालांकि ध्रुव ने कहा था कि उसमें कोई ट्रैकिंग या रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, फिर भी तारा ने अपनी सिक्योरिटी के लिए मोबाइल को फिर से चेक किया। उसके बाद उसने कबीर को कॉल किया। कबीर इस वक्त तारा को सबक सिखाने के बारे में ही सोच रहा था। एक नए नंबर से कॉल आने पर उसने झुंझला कर कहा, कम से कम कॉल करने से पहले टाइम तो देख लिया करो, फिर भी क्या इमरजेंसी आ गई जो आधी रात को कॉल किया है? कबीर को लगा कि उसके किसी आदमी का फोन होगा, लेकिन तभी सामने से तारा की आवाज आई। तारा ने तिरछा मुस्कुराते हुए पूरे एटीट्यूड से कहा, अपनी एक छोटी सी हार से इस तरह दिल मिला गए कबीर अग्निहोत्री कि एक अननोन आदमी तक पर गुस्सा निकालने लगे। सामने से तारा की आवाज सुनकर कबीर और भी बौखला गया था। ऊपर से वो उसे बदतमीजी से बात कर रही थी, मानो उनके बीच कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल रिश्ता ना रहा हो। जुबान संभाल कर बात करो तारा अग्निहोत्री, तुमने जो किया है उसके बाद हमारे बीच कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रहा है। मैं भी देखता हूँ आगे अपनी ट्रेनिंग कैसे पूरी करती हो, लेकिन कम से कम पर्सनल रिश्तों का तो लिहाज करो, कबीर ने गुस्से में तेज आवाज में कहा।
अच्छा, तो अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे? तुम अच्छे से जानते थे कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करना मेरा सपना था। बहुत अच्छे से आता है तुम लोगों को मेरे सपने को चलना, तारा ने कड़वाहट से कहा। अपना ये गुस्सा और कड़वाहट किसी और के लिए बचाकर रखना, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, तो मुझे ताने मत मारो। तुम इस प्रोफेशन के लायक ही नहीं हो। जिस दुनिया से अब तक तुम नफरत करती आई हो उसे जड़ से खत्म करने का मौका मिला था तुम्हें, लेकिन क्या किया, उस आदमी को और लोगों की जान लेने का मौका दे दिया। तुम्हें पता भी है उन बच्चों को छुड़ाने के चक्कर में उसने कितने लोगों को बेरहमी से मारा है, कबीर बोला। क्योंकि वे डिजर्व करते थे। तुम क्या कर रहे थे कबीर? मासूम लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तुमसे बेहतर है ध्रुव राणा, और मेरे होते हुए तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। फिर चाहे तो तुम मुझे पुलिस फोर्स से निकलवा सकते हो, तारा ने सीधे सीधे चैलेंज करते हुए कहा। उसका टोन और बदले हुए सुर देखकर कबीर ने सार्कास्टिकली कहा, सही कहा है किसी ने, प्यार में लोग पगला जाते हैं। करो उसे प्रोटेक्ट, मैं भी उसे तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा, फिर देखता हूँ कि वो तुम्हारा क्या हाल करता है। कबीर के धमकाने पर तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो बुरी तरह घबरा गई थी। अब तक वो इस बात की खुशी मना रही थी कि उसका सच सामने आए बिना ही ध्रुव ने मिली और उसके भाई बहनों को ढूंढ लिया था। वो आसानी से जा सकती थी, लेकिन कबीर के रहते ये कहाँ संभव था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तारा ने हड़बड़ा कर कहा। अच्छा, तो अब मैडम को सच्चाई का एहसास हुआ है? तुम्हारी आंखों में ये डर देखकर अच्छा लग रहा है तारा। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कुछ भी करके उसकी लाइफ में बनी रहो और उसे खत्म कर दो। इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। तुमने भले ही मुझे धोखा दिया है, पर अपने आप से धोखा नहीं कर सकती हो। भूल गई उन जख्मों को जो इस माफिया की दुनिया में तुम्हें दिए हैं? कबीर ने अपनी बातों के जरिए तारा के पुराने जख्मों को याद दिलाना शुरू कर दिया था। तारा की आंखों से आंसू का कतरा बह निकला था। उसने भारी आवाज में कहा, मैं भूलना भी चाहूं तो तुम मुझे कहां भूलने देते हो कबीर? मुझे 3 दिन नहीं 5 दिन चाहिए फैसला लेने के लिए, क्योंकि इन 3 दिनों में ध्रुव की शादी है। चिंता मत करो, मैं यहीं पर रुक रही हूं। ठीक है, फिर डबल क्रॉस मत करना, कबीर इस बार थोड़े नरम लहजे में बोला और फिर कॉल कट कर दिया था। तारा कितना भी इमोशनली ब्रेक क्यों ना हुई हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उसने दिमाग से काम लिया। उसने जानबूझकर कबीर से 5 दिन का टाइम मांगा ताकि 3 दिन बाद जब ध्रुव की शादी हो जाए तो वो वहां से कबीर से दूर जा सके। तारा ने सिर्फ इस मामले में ज्यादा नहीं सोचा और सोने के लिए चली गई थी। वहीं ध्रुव को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी और वो बेचैनी से करवट बदल रहा था। नींद नहीं आने पर ध्रुव ने गुस्से में पिलो फेंका और चिढ़ते हुए बोला, जब मेरी शादी मेहर से हो रही है तो मैं क्यों तारा के बारे में सोच रहा हूँ? अच्छा खासा जा रही थी पर बेवजह उसे शादी का बोलकर रोक लिया। ध्रुव जानता था कि जब तक वो जागकर रहेगा उसे नींद नहीं आएगी, इसलिए उसने कुछ दवाइयां ली और फिर थोड़ी देर बाद वो सो गया था। अगली सुबह तारा जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। उसे मिली और उसके भाई बहनों से मिलने की एक्साइटमेंट थी। दूसरा, वो काफी दिनों बाद अपनी मर्जी से बाहर निकल सकती थी। तारा तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा ध्रुव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर को भेज दो या मुझे एड्रेस दे दो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, तारा ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं ही छोड़ाऊंगा। साथ ही ये भी देख लूंगा कि मैंने अपने आदमियों को जो अरेंजमेंट करने को कहा था वो उन्होंने ठीक से किया या नहीं। तुम चाहो तो आज का दिन उनके साथ बिता सकती हो, लेकिन कल फिर वापस यहाँ लौट आना। क्रिश को भी तुमसे अटैचमेंट हो गया है, अगर तुम नहीं दिखाई तो वो मुझे बार बार पूछेगी, ध्रुव ने सफाई देते हुए कहा, जबकि सच तो ये था कि वो खुद तारा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। बीच में तारा पर शक होने पर ध्रुव खुद के दिल को काबू करके उससे दूर था, ये सोचकर कि वो उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन रात को मिली और उसके भाई बहनों को मिलने के बाद उसे तारा की कहानी पर यकीन होने लगा था। ऐसे में ध्रुव का खुद को रोक पाना काफी मुश्किल था। तारा ने उसकी बात पर हामी भरी और कुछ ही देर में वो दोनों साथ में गाड़ी के अंदर थे। ध्रुव खुद ही ड्राइव कर रहा था। तारा बिल्कुल चुपचाप उसके पास में बैठी हुई थी। तभी ध्रुव बोला, कुछ तो बोलो, मैं बोर हो रहा हूँ। तारा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, पर तुम्हें तो ज्यादातर अकेले रहने की आदत है और आसपास से बोलने वाले लोग भी पसंद नहीं हैं, फिर तुम कब से बोर होने लगे? ध्रुव के साथ रहते हुए तारा ने उसकी काफी सारी चीजों को नोटिस किया था। तो तुम मेरे बारे में जानने लगी हो? ध्रुव ने बौहें उठाकर उसे देखते हुए पूछा। थोड़ा बहुत, तारा ने जवाब में इतना ही कहा। एक बार फिर उनके बीच एक खामोशी पसर गई थी। ध्रुव तारा से ढेर सारी बातें करना चाहता था, तो वहीं तारा अपने जज्बातों को काबू किए हुए उसके पास में चुपचाप बैठी हुई थी। दूसरी तरफ युग याशी को मलिक के पास छोड़कर कृषा के पास राणा मेंशन आ गया था। कृषा याशी के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि योग ने याशी का जो नंबर दिया था वो बंद आ रहा था और ना ही मलिक का नंबर लग रहा था। क्या याशी को किसी ने देख लिया है जिसकी वजह से उस पर कोई मुसीबत आ गई है? ये अगले पार्ट पर पता चल जाएगा, तो समीक्षा कर दीजिए।